एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
संगीत हल्का होकर समाप्त।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे साहित्यकार की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही आयरलैंड की वो हरी भरी वादियाँ, रहस्यमयी लोक कथाएँ और हाँ, एक उथल पुथल भरा इतिहास सब आंखों के सामने आ जाता है।
विलियम बटलर येट्स।
जी हाँ, विलियम बटलर येट्स। हमारे एक श्रोता ने येट्स पर कुछ बेहद दिलचस्प लेख, कुछ जीवनियाँ और आलोचनात्मक नोट्स हमारे साथ साझा किए हैं।
हाँ, काफी अच्छा संकलन है वो।
तो आज हमारी ज्ञान गोष्ठी का मिशन यही है कि इन स्रोतों की गहराई में जाकर वो सबसे जरूरी और शायद कुछ हैरान करने वाली बातें समझे जिन्होंने येट्स को सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि कह सकते हैं एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। बिल्कुल, येट्स सिर्फ आयरलैंड के नहीं हैं, वो तो विश्व साहित्य के एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने कविता, नाटक और यहाँ तक कि राजनीति पर भी अपनी छाप छोड़ी।
सही।
उनका जीवन और उनका काम वो असल में आधुनिकता की शुरुआत, राष्ट्रीय पहचान की खोज और वे कला का उद्देश्य क्या है, इन जैसी बड़ी बहसों का आईना है। तो इन स्रोतों के जरिए येट्स को समझना वाकई एक रोमांचक सफर होने वाला है। मतलब एक ऐसा सफर जो मिथकों, जादू टोने, क्रांतिकारी राजनीति और निजी जुनून के धागों से बुना है।
तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर येट्स के समय और उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म हुआ था 1865 में
हाँ,
और मृत्यु 1939 में। ये वो दौर था जब पुरानी दुनिया जैसे ढल रही थी और एक नई दुनिया करवट ले रही थी। विक्टोरियन युग का अंत हो रहा था, विज्ञान का जोर बढ़ रहा था।
हाँ, पर साथ ही एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन में महसूस हो रहा था शायद।
बिल्कुल,
माहौल बड़ा दिलचस्प था। आप देखिए, एक तरफ डार्विन के विचारों ने आस्था की जड़ों को हिला दिया था, टेलीग्राफ जैसी चीजें दुनिया को जोड़ रही थीं, औद्योगिक क्रांति समाज को बदल रही थी, लेकिन इसी वैज्ञानिक भौतिकवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी थी। लोग रहस्यवाद, प्राचीन ज्ञान, मिथकों में दोबारा दिलचस्पी ले रहे थे।
अच्छा।
हाँ, मतलब पुराने स्रोतों में नए अर्थ तलाशे जा रहे थे और येट्स वो इसी माहौल की उपज थे।
और आयरलैंड का तो अपना एक अलग ही संघर्ष चल रहा था उस समय।
बिल्कुल, ब्रिटिश शासन से आजादी की लड़ाई, अपनी अलग पहचान बनाने की जद्दोजहद।
और यहीं पर वो आयरिश साहित्यिक पुनर्जागरण या आयरिश लिटरी रिवाइवल आता है ना, जिसके येट्स एक तरह से अगुवा थे।
सही कहा, डगलस हाइट की गेलिक लीग थी वो आयरिश भाषा को जिंदा करने में लगी थी। लेडी ग्रेगरी जैसी साथी नाटककार थीं जो आयरिश थिएटर को नया रूप दे रही थीं। और येट्स ने इस पूरे आंदोलन को एक बौद्धिक और कलात्मक दिशा दी। उनका मानना था कि आयरलैंड की आत्मा उसकी प्राचीन सेल्टिक कथाओं, मिथकों और लोकगीतों में बसती है
अच्छा।
और इन्हें दोबारा जिंदा करके ही एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान गढ़ी जा सकती है। पर वो सिर्फ आयरलैंड तक ही सीमित नहीं थे।
हाँ, इन स्रोतों में जिक्र है कि यूरोप में भी उस समय प्रतीकवाद यानी सिंबलिज्म और सौंदर्यवाद, कला कला के लिए वाला आंदोलन, ये सब चल रहे थे।
जी,
और इन सब का उन पर गहरा असर था। वो जैसे दो दुनियाओं के बीच खड़े थे, एक तरफ अपनी आयरिश जड़ें और दूसरी तरफ यूरोप के नए कलात्मक प्रयोग।
हाँ, प्री राफेलाइट चित्रकारों की कला को भी उन्होंने सराहा और वो हमेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन जैसे गुप्त रहस्यवादी समूहों में भी शामिल हुए।
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प हालमेल है।
और यही हालमेल उनकी कला को अनोखा बनाता है। और फिर राजनीति भी थी, होम रूल की मांग थी, आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड का गुप्त संगठन था, फिर 1916 का वो ईस्टर विद्रोह जिसने डबलिन को हिला दिया।
हाँ,
स्वतंत्रता संग्राम और फिर गृह युद्ध, येट्स इन सब के साक्षी थे और कहीं ना कहीं भागीदार भी।
अच्छा।
वो कवियों, रहस्यवादियों और क्रांतिकारियों सबके बीच उठते बैठते थे। तो इन सभी धाराओं ने मिलकर येट्स की वो जटिल सोच और उनकी बहुस्तरीय कविता को आकार दिया।
तो ये था वो तूफानी माहौल जिसमें येट्स जी रहे थे और लिख रहे थे। अब जरा उनके शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं। जन्म डबलिन में हुआ।
हाँ, सैंडी माउंट में।
पिता जॉन बटलर येट्स एक जाने माने पेंटर थे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे।
बिल्कुल, और माँ सुसान पोलेक्स फैन, वो स्लाइगो से थीं। स्लाइगो का जिक्र बार बार आता है उनके जीवन में।
हाँ, क्यों, इतना क्या खास था स्लाइगो में?
देखिए, स्लाइगो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो येट्स की कल्पना का उद्गम स्थल था। माँ के परिवार की कहानियाँ, वहाँ के लोकगीत, परियों और मिथकों की बातें, समंदर, पहाड़, ये सब उनके अंदर बहुत गहरा उतर गया था।
अच्छा।
उनके पिता भले ही उन्हें तर्कवादी बनाना चाहते थे, पर स्लाइगो की वो रहस्यमयी दुनिया ने उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचा। यही वजह है कि उनकी शुरुआती कविताओं में स्लाइगो एक जादुई जगह की तरह उभरता है।
पिता की कलात्मक महत्वाकांक्षाएं थीं, घर में आर्थिक तंगी भी थी, तो परिवार लंदन और डबलिन के बीच भटकता रहा।
हाँ, और इसी वजह से उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई। स्कूलों में वो अक्सर खुद को अलग थलग पाते थे।
ऐसा लगता है कि वो किताबी पढ़ाई से ज्यादा अपने अनुभवों और अपनी कल्पना की दुनिया से सीख रहे थे।
बिल्कुल। बाद में उन्होंने डबलिन के मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला जरूर लिया, शायद पिता के कहने पर।
हाँ।
लेकिन जल्दी ही समझ गए कि उनका कैनवस कागज है, रंग नहीं।
और वहीं उनकी मुलाकात जॉर्ज रसल यानी ए.ई. जैसे लोगों से हुई।
हाँ, जो रहस्यवाद और थियोसॉफी में रुचि रखते थे। यहीं से उनकी गूढ़ विद्याओं में दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने फिर डबलिन हर्मेटिक सोसाइटी की सह स्थापना भी की।
ओके।
ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था जहाँ कला और रहस्यवाद का संगम शुरू हुआ।
और यहीं से उनके बड़े विचारों और योगदानों की जमीन तैयार होती है। इन स्रोतों में जो एक बात बार बार उभर कर आती है वो है मिथकों का इस्तेमाल।
हाँ।
लेकिन सिर्फ पुरानी कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि उन्हें एक नया आधुनिक अर्थ देना।
ये येट्स की सबसे बड़ी खासियत थी, कह सकते हैं। उन्होंने आयरिश मिथकों और सेल्टिक लोक कथाओं को महज अतीत का किस्सा नहीं रहने दिया। उन्होंने दिखाया कि कुचुलिन या ओएसिन जैसे प्राचीन नायक भी 20वीं सदी के इंसान की दुविधाओं, उसके प्रेम, उसकी वीरता, उसके संघर्षों को जाहिर कर सकते हैं। एक तरह से उन्होंने मिथक को समकालीन बना दिया।
अच्छा।
उनकी शुरुआती लंबी कविता है द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओएसिन। वहां से लेकर बाद की सघन कविताओं जैसे लेडा एंड द स्वान तक ये यात्रा साफ दिखती है।
ये हस्तक्षेप का भयावह क्षण होता है, उसे दिखाने के लिए करते हैं। बहुत शक्तिशाली कविता है वो।
और उनकी भाषा, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है स्रोतों में, पैशनेट सिंटैक्स या भावपूर्ण वाक्य विन्यास। ये सुनने में थोड़ा अकेडमिक सा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में?
इसका सीधा सा मतलब है कि येट्स सिर्फ शब्दों के अर्थ से नहीं खेलते थे, बल्कि वाक्य की बनावट, उसकी लय, उसकी गति, उससे भी भावनाएं पैदा करते थे।
अच्छा।
जैसे
उनकी कविता ईस्टर 1916 है, उसमें एक पंक्ति बार बार आती है, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, एक भयानक सुंदरता ने जन्म लिया है। तो उसकी जो लय है और इसका जो दोहराव है, वही उस घटना के मिले जुले भाव यानी गर्व भी और त्रासदी भी उसको पकड़ता है। वाक्य संरचना खुद एक भावनात्मक हथियार बन जाती है।
कमाल है। मतलब शब्दों के साथ साथ वाक्यों की बुनावट भी मायने रखती है।
बिल्कुल।
और फिर है उनकी वो रहस्यमयी किताब इव विजन। ये क्या चीज थी? स्रोतों में इसका जिक्र है, पर ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
हाँ, ये येट्स के सबसे महत्वाकांक्षी और शायद सबसे, कह सकते हैं, अजीब प्रोजेक्ट्स में से एक है।
अच्छा।
अपनी पत्नी जॉर्जी हाइडलीस की मदद से, जो ऑटोमैटिक राइटिंग करती थी।
ऑटोमैटिक राइटिंग मतलब
वो बिना सोचे समझे लिखती जाती थी, जैसे कोई आत्मा उनसे लिखवा रही हूँ। तो उनकी मदद से येट्स ने इतिहास, मनोविज्ञान और आत्मा की यात्रा को समझने के लिए एक बहुत ही जटिल ज्यामितीय और ज्योतिषीय प्रणाली बनाई।
क्या बात है।
इसमें उन्होंने इतिहास को घूमते हुए शंकुओं, जिन्हें वो गायर्स कहते थे, उनके जरिए समझाया था।
पर क्या ये वाकई आत्माओं का संदेश था या कुछ और? मतलब क्या मानते हैं लोग
इस पर? आज भी बहस होती है। कुछ मानते हैं कि येट्स इसे सच मानते थे, कुछ का कहना है कि उनकी पत्नी का एक बहुत ही रचनात्मक तरीका था अपने पति को प्रेरित करने का, शायद अवसाद से निकालने का, और कुछ इसे येट्स की अपनी कल्पना और दुनिया में एक व्यवस्था, एक पैटर्न खोजने की तीव्र इच्छा का प्रतीक मानते हैं।
खैर,
चाहे जो भी हो, ये दिखाता है कि येट्स दुनिया को समझने के लिए एकीकृत ढांचा बनाने को कितने बेताब थे, भले ही वो ढांचा कितना भी गूढ़ क्यों ना हो। और हाँ, इसने उनकी बात की कविताओं जैसे द सेकंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम को गहरे प्रतीक दिए।
दिलचस्प है। और थिएटर को नहीं भूलना चाहिए, एबे थिएटर की स्थापना लेडी ग्रेगरी और जेम्स सिंच के साथ मिलकर।
हाँ, एबे थिएटर की स्थापना आयरिश नाटक के लिए एक मील का पत्थर थी। ये सिर्फ एक थिएटर नहीं था, ये एक राष्ट्रीय मंच था जहां आयरिश कहानियां, आयरिश आवाजें गूंजती थीं। येट्स चाहते थे कि ये थिएटर लंदन के व्यावसायिक नाटकों से अलग हो, काव्यात्मक हो, कल्पनाशील हो। उन्होंने खुद भी कई नाटक लिखे, हालांकि उनकी कविता ज्यादा मशहूर हुई।
तो इन सब योगदानों से एक बात साफ होती है,
बिल्कुल,
येट्स सिर्फ अपनी कला में डूबे रहने वाले कवि नहीं थे, वो अपने समाज, अपनी राजनीति, अपनी संस्कृति से गहरे जुड़े थे।
बिल्कुल।
और उसे आकार देने की कोशिश भी कर रहे थे।
सही कहा। उन्होंने साबित किया कि एक कलाकार एक ही समय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों हो सकता है। वो कला की बारीकियों पर भी ध्यान देते थे और देश की आज़ादी जैसे बड़े मुद्दों पर भी लिखते थे। ये संतुलन साधना आसान नहीं था, लेकिन येट्स ने ये पर दिखाया।
अब उनकी रचनाओं की बात करें तो ये सफर भी कमाल का है। स्रोतों में उनकी शुरुआती कविताओं जैसे द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओएसिन का जिक्र है, वो तो पूरी तरह से सेल्टिक मिथों और सपनों की दुनिया में रची बसी लगती हैं।
हाँ, वो दौर रोमांटिसिज्म और प्री रफेलाइट कला के प्रभाव का था। सुंदर अलंकृत भाषा, धुंधले लैंडस्केप्स, द सेल्टिक ट्वाइलाइट नाम की गद्य किताब ने तो उन्हें आयरिश रहस्यवाद का चेहरा ही बना दिया था।
लेकिन फिर बदलाव आता है।
हाँ, बदलाव आता है। इन द सेवन वुड्स 1903 और खासकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1914 संग्रह तक आते आते भाषा ज्यादा सख्त, सीधी और जमीनी हो जाती है।
अच्छा।
एक तरह का मोहभंग का स्वर सुनाई देने लगता है। सितंबर 1913 जैसी कविता में वो तत्कालीन आयरिश मध्यवर्ग की जो व्यापारिक मानसिकता थी और राष्ट्रीय नायकों को भूल जाने की प्रवृत्ति, उस पर तीखा व्यंग करते हैं।
और इसी संग्रह की एक कविता है एक कोट, जिसमें वो जैसे अपनी पुरानी शैली को उतार फेंकने का ऐलान करते हैं।
हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि मैंने अपने गीत को एक कोट बनाया था, पुरानी कथाओं के कशीदे से सजाकर, लेकिन मूर्खों ने उसे चुरा लिया और ऐसे पहना जैसे उनका हो। अब मैं नंगा चलूंगा क्योंकि उसमें ज्यादा साहस है। ये एक तरह से एक कवि का अपनी आवाज को बदलने का घोषणा पत्र था।
इसमें शायद एज़रा पाउंड का भी हाथ था।
जी,
वो युवा आधुनिकतावादी कवि।
हाँ, कह सकते हैं। एज़रा पाउंड ने कुछ समय उनके सचिव के तौर पर काम किया था और उन्हें अपनी शैली को और कसने और ज्यादा मॉडर्न बनाने की सलाह दी थी। उसका असर जरूर रहा होगा।
फिर आता है वो दौर जिसने हमें द वाइल्ड स्वान्स एट कूल 1919 और माइकल रोबार्ट्स इन द डांसर 1921 जैसे संग्रह दिए। यहाँ निजी दुख और सार्वजनिक उथल पुथल जैसे घुल मिल जाते हैं।
सही कहा। एक तरफ उम्र बढ़ने का एहसास है, मॉन्टगॉन उनका वो आजीवन प्रेम द्वारा बार बार ठुकराए जाने का दर्द है।
हाँ, मॉन्टगॉन का जिक्र तो करना ही होगा।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका है और आयरलैंड का ईस्टर विद्रोह, ईस्टर 1916 और द सेकंड कमिंग जैसी कविताएं इसी दौर की उपज हैं।
द सेकंड कमिंग की वो पंक्तियां तो थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैनॉट होल्ड।
हाँ, चीजें बिखर रही हैं, केंद्र संभाल नहीं पा रहा। ये पंक्तियां तो जैसे भविष्य की चेतावनी बन गई। आज भी दुनिया भर में संकट के समय लोग इन्हें याद करते हैं।
और फिर द टावर 1928, जिसे कई आलोचक उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं।
मीसंदे, सेलिंग टू बाइजेंटियम, अमंग स्कूल चिल्ड्रन जैसी कविताएं, इनमें येट्स उम्र, कला, इतिहास और आत्मा के बड़े सवालों से जूझते हैं। यहां उनकी वो ए विजन वाली दार्शनिक प्रणाली और उनके काव्य प्रतिभा का अद्भुत संगम दिखता है। वो बूढ़े होते शरीर और कला की अमरता के बीच जो तनाव है, उसे जिस गहराई से पकड़ते हैं, वो बेमिसाल है।
यहां तक कि उनकी आखिरी कविताएं लास्ट पोएम्स जो 1939 में आई।
हाँ, वो भी दिखाती हैं कि उनकी रचनात्मक ऊर्जा अंत तक कम नहीं हुई थी। बहुत शक्तिशाली हैं वो भी।
नाटकों में कैथलीन ने हुले हैंड 1902 का जिक्र भी जरूरी है। इसका राजनीतिक असर बहुत ज्यादा हुआ था, है ना?
हाँ, बहुत ज्यादा। इस नाटक में आयरलैंड को एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाया गया था जो युवाओं को अपनी आजादी के लिए लड़ने का आह्वान करती है, और मॉन्टगॉन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी।
ओहो।
क्या उनके नाटक ने वाकई लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था?
अच्छा।
हाँ, उन्होंने लिखा भी, डिड दैट प्ले ऑफ माइंड सेंड आउट सर्टन मैन द इंग्लिश शॉट? क्या मेरे उस नाटक ने कुछ लोगों को अंग्रेजों की गोली का निशाना बनने भेज दिया? ये कला और उसकी सामाजिक जिम्मेदारी पर एक गहरा सवाल था जिससे वो जिंदगी भर जूझते रहे।
ये दिखाता है कि वो अपनी कला के असर को लेकर कितने संवेदनशील थे। खैर, उनकी विरासत की बात करें तो 1923 में नोबेल पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी घटना थी।
हाँ, बहुत बड़ी। ये सिर्फ येट्स का सम्मान नहीं था, बल्कि ये नए नए आजाद हुए आयरिश राष्ट्र और उसके साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी। नोबेल समिति ने उनकी हमेशा प्रेरित कविता, जो एक पूरी कौम की आत्मा को अभिव्यक्ति देती है, की प्रशंसा की थी। ये उस समय के लिए वाकई बड़ी बात थी।
उनके समकालीन कवि भी जैसे T.S. Eliot और एज़रा पाउंड, वो भी उनकी महानता को मानते थे, भले ही उनकी अपनी शैली अलग थी।
बिल्कुल, इलियट ने तो उन्हें अपने समय का सबसे महान कवि कहा था।
हाँ।
बाद में न्यू क्रिटिसिज्म ने उनकी कविताओं को अकादमिक अध्ययन का केंद्र बना दिया। उनकी जटिल संरचना, उनके प्रतीक, इन सब का खूब विश्लेषण हुआ।
और आजकल?
आजकल पोस्ट कॉलोनियल आलोचकों ने उनके राष्ट्रवाद, उनकी वो एंग्लो आयरिश पहचान के जो अंतर विरोध थे, और उपनिवेशवाद के अनुभव को उनकी कला में देखने के नए तरीके खोजे हैं।
तो इससे तो येट्स आज के पाठकों के लिए और भी प्रासंगिक हो गए हैं।
हाँ बिल्कुल, उनकी प्रासंगिकता समय के साथ कम नहीं हुई बल्कि शायद बड़ी ही है। सीमस हीनी जैसे बाद के आयरिश कवियों पर तो उनका गहरा असर दिखता ही है, और दुनिया भर के कवियों और पाठकों के लिए वो आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। इतिहास कैसे खुद को दोहराता है, उनकी वो गायर्स की थियरी याद है?
हाँ हाँ।
कला और जीवन के बीच का रिश्ता, राजनीति और निजी अनुभव का टकराव, ये सब विषय आज भी उतने ही अहम हैं जितने येट्स के समय में थे।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथनों को याद करते हैं जो इन स्रोतों में दिए गए हैं और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला, शिक्षा किसी बर्तन को भरना नहीं बल्कि एक आग जलाना है।
ये सीखने की प्रक्रिया पर एक बेहतरीन टिप्पणी है, मतलब रटने के बजाय जिज्ञासा और कल्पना को जगाना जरूरी है।
येट्स खुद औपचारिक शिक्षा में बहुत सफल नहीं रहे थे।
हाँ, शायद इसीलिए वो अनुभव और प्रेरणा को ज्यादा महत्व देते थे।
दूसरा, उनकी वो शुरुआती कविता द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री के पंक्तियाँ, मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा और जाऊंगा इनिसफ्री।
आह, ये पंक्तियाँ तो शहरी भागदौड़ से दूर प्रकृति की शांति और सादगी की तलाश की एक सार्वभौमिक इच्छा को दर्शाती हैं। कहते हैं उन्होंने ये लंदन की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक छोटे से फव्वारे की आवाज सुनकर लिखी थी, स्लाइगो की याद में।
अच्छा, और वो कालजयी पंक्तियां द सेकंड कमिंग से, चीजें बिखर जाती हैं, केंद्र पकड़ नहीं रख सकता, केवल अराजकता दुनिया पर छा जाती है।
हाँ, प्रथम विश्व युद्ध और क्रांति के बाद के माहौल में लिखी ये पंक्तियां किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक विघटन का प्रतीक बन गई हैं। आज भी जब दुनिया में उथल पुथल मचती है, ये पंक्तियां याद आती हैं।
सही कहा, चिनुआ अचेबे ने तो अपने प्रसिद्ध उपन्यास का शीर्षक ही थिंग्स फॉल अपॉर्ट रखा था।
बिल्कुल,
और उनकी कब्र पर लिखी पंक्तियां हैं अंडर बेन बल्बन से, एक ठंडी नजर डालो जीवन पर, मृत्यु पर, घुड़सवार गुजर जाओ।
ये पंक्तियां थोड़ी रहस्यमयी हैं, है ना? कुछ हद तक अभिजात्य भी लगती हैं। ये जीवन और मृत्यु के प्रति एक तटस्थ, शायद थोड़ी दूरी बनाए रखने वाले नजरिए को दिखाती हैं। कलाकार की शायद यही नियति है, दुनिया को देखना, समझना, लेकिन उसमें पूरी तरह डूबे बिना आगे बढ़ जाना, घुड़सवार गुजर जाओ।
वाकई ये पंक्तियां येट्स के व्यक्तित्व की जटिलता को दर्शाती हैं। इन स्रोतों में कुछ और रोचक कम ज्ञात बातें भी हैं, जैसे वो एज़रा पाउंड वाली बात तो हमने की, एक और जिक्र है स्टाइनेक कायाकल्प प्रक्रिया का। ये क्या था, कुछ अजीब सा लग रहा है।
हाँ, ये थोड़ा अजीब किस्सा है। 1934 में जब येट्स लगभग 70 के थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी शारीरिक और रचनात्मक शक्ति कम हो रही है,
अच्छा,
तो उन्होंने ये विवादास्पद सर्जिकल प्रक्रिया करवाई। ये एक तरह की नसबंदी थी जिसके बारे में तब माना जाता था कि इससे मर्दाना ताकत और ऊर्जा वापस आती है।
अरे,
जाहिर है वैज्ञानिक रूप से ये साबित नहीं हुआ, लेकिन ये दिखाता है कि येट्स अपनी रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे।
सच में, और वो ऑटोमेटिक राइटिंग वाली बात, क्या वाकई उनकी पत्नी जॉर्जी आत्माओं से बात करती थी? ये रहस्य सुलझा या नहीं?
नहीं, ये हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। येट्स तो ऐसा ही मानते थे और इसी ने ए विजन को जन्म दिया। लेकिन कई आलोचक मानते हैं कि जॉर्जी एक बहुत बुद्धिमान महिला थी और उन्होंने शायद ये तरीका अपने पति को, मतलब येट्स को, अवसाद से निकालने और उन्हें एक नई रचनात्मक दिशा देने के लिए अपनाया था।
हो सकता है।
हाँ, शायद ये दोनों का मिला जुला प्रयास था, एक साझा भ्रम जिसने महान कला को जन्म दिया।
और मॉडगोन, उनका जिक्र किए बिना तो बात अधूरी है।
उनका ये एक तरफा आजीवन जुनून।
हाँ।
मॉडगोन एक असाधारण महिला थी, बेहद खूबसूरत, क्रांतिकारी विचारों वाली, आयरिश स्वतंत्रता की कट्टर समर्थक। येट्स उनसे बे इंतहा प्यार करते थे, कई बार शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया। बाद में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसे येट्स पसंद नहीं करते थे। तो इस अधूरे प्यार ने येट्स को बहुत तकलीफ दी, लेकिन इसी दर्द और जुनून से उनकी कुछ बेहतरीन प्रेम कविताएं निकली। ये उनके जीवन की एक केंद्रीय त्रासदी भी थी और प्रेरणा भी।
ये सब बातें येट्स को महज एक साहित्यिक हस्ती नहीं बल्कि एक जीते जागते जटिल इंसान के रूप में दिखाती हैं, अपनी इच्छाओं, अपनी कमजोरियों, अपनी खोजों के साथ।
बिल्कुल, और यही चीज उनकी कला को और भी शक्तिशाली बनाती है। वो सिर्फ विचारों की बात नहीं करते, वो उन विचारों को जीते हैं, उनसे जूझते हैं।
तो अंत में इन स्रोतों से येट्स की जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे कलाकार की है जो व्यक्तिगत जुनून और राष्ट्रीय नियति, प्राचीन मिथक और आधुनिक वास्तविकता, कला की साधना और राजनीतिक सक्रियता के बीच लगातार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था।
हाँ, और उनकी विरासत हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, आज जब दुनिया शायद पहले से भी ज्यादा खंडित और अनिश्चित लगती है, जहाँ वो केंद्र फिर से डामाडोल नजर आता है। क्या कला हमें रास्ता दिखा सकती है? क्या वो हमें बिखराव को समझने या शायद उसे एक सूत्र में पिरोने में मदद कर सकती है?
बड़ा सवाल है ये।
येट्स का जीवन और उनकी कविताएं कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन वो इस सवाल की जटिलता और इसकी जरूरत को पूरी शिद्दत से हमारे सामने रखती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी मानवीय कल्पना अर्थ और सौंदर्य की रचना कर सकती है।
येट्स के इस गहरी और बहुस्तरीय दुनिया में हमारी आज की ज्ञान गोष्ठी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इन स्रोतों के जरिए येट्स को समझने की ये कोशिश आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी।
समापन संगीत शुरू होता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।
संगीत तेज होकर समाप्त।